क्या याद दिलाते हैं परमात्मा कि जो रानी बनी हुई थी वह बहने अच्छे अच्छे वस्त्र पहना करती थी, बहुमूल्य आभूषण पहना करती थी, परंतु परमात्मा याद नहीं किया। क्योंकि राजा लोग अपनी बेइज्जती समझते हैं कि हमारी बहन बेटी या पत्नी मां बहन कोई किसी अन्य स्थान पर जावे तो उसकी कम हो जाती है, अपनी इज्जत समझते हैं बहन बेटियों को कारों और कोठियों में रखने का, उन्हीं में चलने की, इस प्रकार की उनकी व्यवस्था वो आप ही बनाए रहते हैं। और सत्संग में आए बिना इस जीव को ज्ञान नहीं होता तो जो कर्म कर रहा है ये कहां तक ठीक है और कहां तक अनुचित है। सत्संग में आने से वो रानी वो बहनें जो अन्य भी साहूकारों की बेटी बहन स्त्रियां जो अच्छे खाना खा करती थी, किसमस काजू मिलाकर खीर हलवे बनाकर खाती थी, बांदियां सेवा किया करती थी एक परमात्मा के नाम बिना, होय होय कबीर एक हरि के नाम बिना वो नार कूतिया हो, गली गली भौंकत फेरे फिर टूक न डाले कोवे। वही रानी या ऊंचे घर की जो जिसको ऊंचा घर मानते हैं हम, लेकिन संत कहते हैं ऊंचा वो है जो बुरे काम तो दूर हो भगवान बजता हो, वो चाहे किसी जाति किसी मजहब का है, उसी को परमात्मा धनवान मानते हैं कि कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोए, धनवान उसी को जानिए जिस पर राम नाम धन होए। तो वो लड़की उस स्त्री वाली आत्मा उस बहन वाली आत्मा फिर कुतिया बन जाती है और कुतिया बनकर उन्हीं महलों के बाहर गली में आकर के वो जन्म लेती है। सर्दी का मौसम होता है, ऊपर से वर्षा हो जाती है, ओले बर्फ गिर जाती है और वो कुतिया वही आत्मा जो महलों में रहती थी पर्दों में रहती थी भगवान की महिमा से वंचित रही सत्संग में नहीं आ सकी, वो कुतिया बनकर और गली में लेटी हुई है जो गद्दों के पर विश्राम किया करती थी। अब भूख लगती है जो काजू और किसमस के हलवे जूठे छोड़ा करती थी बांदिया खाया करती थी, आज वही कुतिया बनकर वही आत्मा जो भगवान नहीं बजा करती थी झूठे टूक के लिए तरस रही है, छोटे रोटी के झूठे टुकड़े के लिए तरस रही है। कहते हैं वो फिर वहां जाती है सरायों में, पहले धर्मशालाओं के अंदर अतिथि गणाते जाते थे, रुकते थे, अपनी रोटियां लाते थे वहां, तो वहां कहते हैं उस सराय के सामने खड़ी होकर वह रानी वाली आत्मा और वहां शोर मचा रही है, हु कर रही है टूक के लिए। कुत्ता सामने बैठा होता है, खाना खाने वाला आहार कर रहा है, अपनी रोटी खा रहा है और कुत्ता या कुतिया जो सामने बैठी है वो एक टूक के लिए ऐसे देखती रहती है, शायद अभी तेरी तरफ को ये फेंक दे, शायद अभी एक टूक तेरी तरफ फेंक दे, ऐसे देखती न्यू देखती रहती है ऐसे जैसे अब आया है। लेकिन वो तो उसकी मर्जी है, कब याद आओ उसके अभी सामने कुत्ता बैठा टूक डाल दे को ना डालू, एक आधा ऐसा निकम्मा हो खाकर रोटी डाट कर छालना चाल पड़े टूक भी ना डाले। तो कहने का भाव ये है कि ये दुर्गति उस नादान आत्मा ने क्यों करवा ली, क्योंकि वह सत्संग में नहीं आई, संतों का संग नहीं किया, परमात्मा के महिमा से वंचित रही, उसने अपने उसी काम को श्रेष्ठ माना जो उस भवनों में उनको उस महल में उस जेल में उनको सुनने को मिला था। हम उनको तो वो भवन मान रही थी, संत उनको जेल मानते हैं, वो तो कैद हैं ये ऐसे उच्च घरों की लड़कियां औरतें जो अपने आप को उच्च मानती हैं और परमात्मा की महिमा ना सुनने से क्या कहते हैं, नक बेसर नक पवणी पर थी हार हमेल, सुंदरी से कुतिया वणी देख परमात्मा के खेल, देखो साहिब के खेल। इसलिए प्रभु याद दिलाते हैं और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंद जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंद इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे के सोवे गफलत में बंदे, उमदा चोला बण अनमोला लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बण अनमोला लगे दाग पे दाग रे, दो दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिराणी आग रे, जले बिराणी आग रे। और बात तेरे काम न आवे के सोवे गफलत में बंद, और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंद और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंद भाई हर सुमरे सो हंस कवावे कमी करो दी कागरे, हर सुमरे सो हंस कवावे कामी करो दी कागरे, बोरा न भर में विस के बन में चल बेगमपुर बागरे, चल बेगमपुर बागरे। और बात तेरे जाग जाग नर जाग रे, और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंद जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी पाया अटल सुहाग रे, शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी पाया अटल सुहाग रे, नितानंद महबूब गुमानी परगट्य पूरण भाग रे, परगट्य पूरण भाग रे। और बात तेरे काम न आवे के सोवे गफलत में बंद, जाग जाग नर जाग रे, और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे जाग जाग नर जाग रे। सत साहे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे, दिमाग रे रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे। ये शरीर एक धर्मशाला बताई है संतों ने, इस जीव को जगाने के लिए नाना प्रकार के उदाहरण दिए हैं। इस शरीर को एक चलती फिरती सरा समझो, धर्मशाला समझो, एक रेस्टोरेंट समझो, और इसमें आपको ये जो आपको रेस्टोरेंट में रहने के लिए यानी इस धर्मशाला में रहने के लिए जो समय मिला है वो आपने जितने पैसे जमा करा रखे हैं उतने समय के लिए आपकी बुक हो चुकी है, और जिस दिन वो समय आपका पूरा हो जाएगा, आपके पैसे समाप्त हो जाएंगे, आपको ये धर्मशाला ये सराय छोड़नी पड़ेगी, इसमें नहीं रहने देंगे। आप अगर ठीक ठाक से नहीं निकलते हो, स्वेच्छा से नहीं आते हो, तो आपको उठा करके बाहर उसके नौकर निकाल देते हैं। धर्मशाला आपने किस लिए धर्मशाला में गए हो, किस लिए आप दूर देश में जाकर के अपना घर छोड़ करके धर्मशाला में गए हो, रेस्टोरेंट में रुके हो, उसका उद्देश्य भी कोई अवश्य होगा। वहां आप बिजनेस करने गए हो, आप वहां किसी व्यवसाय के लिए गए हो, और जो उस धर्मशाला में कमरा बुक करा के वहां व्यवसाय करते हैं, अपना कोई बिजनेस करते हैं, वो लोग 2 के 20 बना लेते हैं, वो अपना दुगने तिगने चौगने धन को इकट्ठा करके बना करके वापस स्वदेश आ जाते हैं। और जो व्यक्ति उस धर्मशाला में जाकर के सराय में जाकर के कमरा भी बुक करा लिया और जो मूल धन लेकर गया था उसमें से शराब पीवे, ओक्का पीवे, जुआ खेले और सिनेमा देखता फिर व्यवसाय किया नहीं, जिस उद्देश्य से गया था वो काम करा नहीं, तो वो कंगाल हो जाता है, और फिर वो कंगाल होने के उपरांत कितना कष्ट उठाता है। इसी प्रकार इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे, दिमाग रे रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। अब मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम संतों के विचार तो सुनते नहीं, अपने आप में घने समझदार बुद्धिमान बने बैठे हैं, अपनी अपनी अटकलों से अटके बैठे हैं। मैं मेरा लड़का ऐसे पढ़ गया, वो इंजीनियर बन गया, मेरा लड़का ऐसे पढ़ गया, आईएएस कर गया, आईपीएस कर गया, अब वो जो पढ़ाई उन्होंने पढ़ी है उसमें तो विद्वान हो गए वो, इसमें तो कोई शक को नहीं। लेकिन परमात्मा ने जो परमात्मा को प्राप्ति का जो ज्ञान है और इस मनुष्य शरीर का जो उद्देश्य है वो तो ज्ञान उनको ना हुआ, फिर वो अपने अपने दिमाग से अटके रहते हैं। इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे, दिमाग रे अपनी अपनी कहते रहते हैं, इसने काम बने नहीं, अपनी अपनी कह गए इस दुनिया के मां, बिन साहेब की बंदगी की तठोर ठिकाना न। अपनी अपनी तो दुनिया कह के चली जाती है, और बड़े बड़े वैज्ञानिक भी पता नहीं क्या क्या अन्वेषण करके चले गए, लेकिन आगे क्या होगा। जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते थे और जो ये एसी बना के चले गए, जहाज बना दिए, ये उनने को नहीं मिलना है, वतना विरक्त कुत्ते और गधे की जुन्नी में गए होंगे, क्योंकि परमात्मा की भक्ति उन्होंने करी नहीं। इस प्रकार इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे, दिमाग रे ये रात बसेरा, ये पूरा जीवन आपका एक रात्रि समझो, इस धर्मशाला में आप अपना टाइम पास कर रहे हो, और जब ये जीवन अंत होगा, आपके शरीर का अंत होगा, जब आप शरीर छोड़कर जाओगे, आपका सवेरा होगा, ये एक सौपन होगा। आज जिसको आप बेटा मानते हो, बेटी मानते हो, माता मानते हो, पिता है, मेरी कार है, कोठी है, मेरी जमीन, एक इतने एकड़ मेरी जमीन है, जब सौपन सा होगा, यानी जैसे सौपन में हम कई बार कार में बैठे होते हैं, रांची स्पीड पर चला रहे हैं, कभी ब्रेक मारते हैं, कभी गेर बदलते हैं, कलच दबाते हैं, और जब सपना टूट जाता है तो उड़े रजाई में पैर मारते पावा, वो कार नहीं होती। तो ऐसे ही जब ये शरीर छूट जाएगा उस समय आपका वो सपना टूटेगा, यू सवेरा होगा, फिर आप सोचोगे कौन था मेरा बेटा, कौन थी मेरी कोठी, आपको याद भी ना आएगी कौन थी। फिर तो वो यम के दूत दिखाई देंगे ऐसी भूंडी आकृति, जिसके देखते कलजा पाटे भूल जाएगा सब कुछ, मैं कौन था, कितना आया था, मैं राजा था या कोई सेठ था या गरीब था। तो फिर उसको उस समय ये बात याद आती है, अरे मैं आया था किस लिए संसार में, इसलिए आया था कि भगवान की भक्ति करूंगा, वो तो की नहीं, ये सारा जीवन मेरी बकवादा में खो दिया। इस जीव को फिर धर्मराज के सामने, उस न्यायाधीश के, प्रभु के न्यायाधीश के समक्ष खड़ा कर दिया जाता है। वो न्यायाधीश धर्मराज पूछता है कि सुना भाई, दिखाओ तुम्हारे इसकी गठड़ी खोल कर देखो, देखो ये क्या कुमा के लाया है, कितना पुण्य और कितने पाप हैं इसके। तो वहां तो कहने की देर ही है कि उसी समय उस आत्मा की एक फिल्म चल पड़ेगी। तो वो क्या देखते हैं, धर्मराज कहता है अरे नालायक, जब तू यहां से गया था क्या कह रहा था कि हे भगवान मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो, मैं आपकी भक्ति करूंगा, परमात्मा बजा करूंगा, कोई बकवाद नहीं करूंगा, ना शराब मांस तम्बाकू नहीं पीऊंगा, चोरी ठगी जारी नहीं करूंगा, मैं नेक नीति से आपको याद किया करूंगा प्रभु, और अब क्या करके आया है तू देख। उसके एक फिल्म चला दी जाती है, वहां पर गवाह की जरूरत को ना भगवान को, परमात्मा को वहां पर किसी एविडेंस की आवश्यकता नहीं है। एक फिल्म जो हमारे यहां, जैसे हम जितने भी कर्म करते हैं, एक फिल्म हमारे कंप्यूटर अंदर मस्तिष्क में, एक परमात्मा ने कंप्यूटर फिट कर रखा है जीव जीव के अंदर, उस कंप्यूटर में कोड वर्डों में हमारे सब कर्म विद्यमान रहते हैं, चाहे हम बुरी सोचते हैं, अच्छी सोचते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं। और इसकी एक कॉपी प्रतिदिन धर्मराज के दरबार में इस फिल्म की चली जाती है, वहां फैक्स हो जाती है। उस समय ये जीव वहां धर्मराज के दरबार में खड़ा होता है, उसके सामने किए हुए उसके सुक्रम और कुक्रम की एक फिल्म चल पड़ती है, ये नीची गर्दन कर लेता है, क्योंकि वहां ये नो भी ना कह सकता, मैंने यो पाप ना करा, यहां तो झूठ बोल का हम झूठी गवाही देकर बरी हो जाते हैं किसी मुकदमे में, लेकिन वहां झूठ नहीं चलेगी। उसके लिए फिर वो क्या कहता, भगवान इब क्या गलती बन गई, एक बार मनुष्य जीवन फिर दे दो मुझे, मैं फिर आपको बहुत याद करूंगा, परमात्मा की भक्ति किया करूंगा, शुभ कर्म करूंगा, ऐसे पाप मैं फिर नहीं करूंगा जो इस फिल्म में मैं देख रहा हूं, ये मैंने बहुत गलती कर दी। तब धर्मराज जी कहते हैं अरे नालायक, तू प्रत्येक बार ये बकवाद कर, ये बहाने बनाता है, देख तू कितने मनुष्य जन्म दिए मैंने तेरे को, एक ट्रेलर दिखाता है उसके पिछले जन्मांतर के, जन्म जन्मांतर के पिछले वो फिल्म चलाता, देख एक मनुष्य जीवन तू गया जब क्या कह रहा है कि भगवान इब का तो मैं पूरी भक्ति करा करूंगा, परमात्मा को याद करूंगा, पूरे बुरे कर्म नहीं करूंगा, और देख तो उल्टा फिर क्या लाया इस जीवन में, वह कुकर्म करके आया, भक्ति की नहीं, इतने पाप को मां के लाया था, उससे दूसरे जन्म में देख, तीसरे में देख, चौथे में देख। फिर उसको कहते हैं कि चल बेटा इब तो तू गधा बन, फिर कभी तुझे मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, फिर देख लेंगे के कला तोड़ेगा तू। पुण्यात्माओं, आज हमें यह मनुष्य शरीर मिला है, सभी सदग्रंथ और सभी संतों के जो विचार हैं, जिन पर जिन्होंने परमात्मा पाया है, वो सभी ये कह रहे हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है भाई, मिले न बारम्बार, और जैसे तरवरत पत्ता टूट जाओ फिर नहीं लागे डर, ये मनुष्य जीवन तो आपके हाथ से ऐसे छूट जाएगा, जब ये शरीर छूट जाएगा तो जैसे पत्ता वृक्ष से टूट के गिर जाता है, पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता उसके ऊपर, वो व्यर्थ हो लिया, वहां से खत्म हो उसकी उसकी स्थिति, उसका संबंध ही नहीं रहा उससे। इसी प्रकार मृत्यु के उपरांत ये प्राणी यहां से चला जाता है, इस परिवार से, उस शरीर से उसका फिर लिंक नहीं रहता, फिर तो कभी फिर मनुष्य जीवन उसको प्राप्त होगा, और फिर ना क्या पता कोई संत मिले ना मिले, कोई तत्वदर्शी संत मिले और मनुष्य जीवन भी हो जाए, तत्वदर्शी संत ना मिला तो फिर डले ढोकर चले गए, फिर भी ये व्यर्थ रहा। इस प्रकार परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि उमदा चोला बिना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे, या दो दिन की गुजरान क्यों जड़े बिराणी आग रे। बिराणी आग, बिराणी आग कैसे जल रहे हैं, और दाग पर दाग कैसे लग रहे हैं। हम अपने स्वार्थवश ऐसा घिनौना कर्म कर देते हैं, किसी की डाका मार लेते हैं, कोई और घटिया कर्म कर लेते हैं पैसे कमाने के लिए, कितना मिलावट कर देते हैं। परमात्मा के पास एक बहुत ही सेंसिटिव बैलेंस है, बहुत ही जो त्रुटि रहित एक तुला है, उसके अंदर वो तोलता रहता आपके जो जैसे भी कर्म आप करते हो, और फिर उन किए हुए पापों का आपको परिणाम भोगना पड़ता है। एक व्यक्ति उच्च अधिकारी था, उसने एक उच्च पुलिस अधिकारी था, उसके पास एक विधवा, स्त्री दरखास्त लेकर गई, प्रार्थना लेकर गई कि मैं बचपन मेरा एक ही लड़का हुआ था, मैं विधवा हो गई थी, मेरे 18 एकड़ जमीन मेरे जो यहाँ के हकीकी अर्थात इस मेरे देवर जेठा दी प्रयोग करते थे, मुझे उसमें से कुछ हिस्सा दे देते थे, मैं अपने घर पर पीहर में अपने माता पिता की वहां रह रही थी, वहीं पर मैंने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा बड़ा किया है, पाला पोसा है, अब ये जवान हो गया है और मैं अपनी जमीन मांगने के लिए प्राप्त करने के लिए उन देवर जेठों से कहा, प्रार्थना की तो उन्होंने मना कर दिया, कृपा मेरी जमीन मुझे दिलवाएं। अब उस बड़े अधिकारी ने उस स्त्री से कहा, उस बहन से कहा कि आप दरखास्त दे जाओ, मैं इंक्वायरी करता हूं। उसने उसकी इंक्वायरी करवाई तो उसको पता चला कि उनके अभी कब्जा नहीं हुआ था, कुछ एक ऐसा नियम है कि इतने वर्षों तक उसके नाम चल पड़े दूसरे व्यक्ति के तो उसके कब्जा माना जाता है, फिर वो मालिक उसको ग्रहण नहीं कर सकता। उस अधिकारी को ने पता करवाया कि उस पर कोई कब्जा नहीं है और आसानी से उसको छुड़वाया जा सकता है। अब उस अधिकारी के मन में लालच आ गया कि 16-17 एकड़ जमीन है, कई लाखों रुपए की है, और इस स्त्री के पीछे कोई अप्रोच का आदमी भी नहीं है। इन सब विचार सब प्रकार से सोच के उसने जब वो जिस दिन वो बुलाई थी वो स्त्री वहां गई बहन, तो उसे उस अधिकारी ने कहा कि तेरी जमीन नहीं छूट सकती, इस पर तक कब्जा हो चुका है। हाँ, मैं तुझे ऐसा कर सकता हूं कि उनसे 10-20,000-50,000 रुपए दिला सकता हूं, नहीं तो वो भी नहीं मिलेंगे। उसमें 10-20,000-50,000 रुपये बहुत होते थे और वो करोड़ों की जमीन थी, तो उसको 20-30-50,000 रुपये में राजी करके और तहसील में उसके अंगूठे लगवा कर रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली, अपने बच्चों के नाम, अपने बेटे के नाम करवा दी। इकलौता पुत्र था उस पुलिस अधिकारी के। अब वो वृद्धा वह बेचारी बुढ़िया अपने बच्चे ने लेकर 50,000 रुपये लेकर के किता और रहने लगी। अब उस अधिकारी का एक ही पुत्र था, अच्छा पढ़ लग गया, एसडीएम की नौकरी लग गया, ब्याह की तैयारी हो रही थी, शादी की तैयारी थी, उसी दिन एक्सीडेंट को प्राप्त हो गया। ओए होए होए, जिस बेटे के लिए उसने ऐसा कुकर्म किया, उस वृद्धा की आत्मा दुखाई, वो बेटा ही ना रहा। जिस बेटे को सुखी करने के लिए उस नादान आत्मा ने अपनी पावर का दुरुपयोग किया, अपनी शक्ति का, सत्ता का दुरुपयोग किया, फिर वो टक्कर मार कर रो रहा है, टक्कर मार मार रो रहा है। याद दिलाते हैं परमात्मा, संत जन आकर के हमें प्रभु की महिमा, उसके विधान से परिचित कराते हैं कि उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, या दो दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े बिराणी आग रे, या बिराणी आग अपने ऊपर घेर ली उसने। पुण्यात्माओं, ये सभी जो समाज में कुरीतियां फैल रही हैं, समाज में जो अराजकता फैल रही है, समाज के अंदर जो मानव समाज के अंदर आज प्रेम रहा नहीं, केवल पैसा पैसा दिखाई देता है, भाई बहन का प्यार नहीं, माता पिता का प्यार नहीं, केवल स्वार्थ इतना गहन हो चुका है कि इंसान कति बेशर्म हो लिया। इसका यही कारण है कि उसको तत्व ज्ञान नहीं है, वह भगवान से के विधान से पूर्ण परिचित नहीं है, सत्संग में नहीं आता है। जो इंसान सत्संग में आएगा उसको परमात्मा के विधान से, विधान का ज्ञान होगा, फिर वो गलती नहीं करता। फिर बताया कि हर सुमरे सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे, हर सुमरे सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे, और भौरा ना भर में विष के बन में चल बे गमपुर बागरे। परमात्मा की भक्ति करता है उसे भक्त कहते हैं। हर सुमरे सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे, हंस एक अच्छे भगत को हंस के उपाधि से संबोधित किया जाता है। हंस हंस किसे कहते हैं? एक पक्षी होता है हंस, सफेद बुगले जैसा ही होता है, और उस हंस के अंदर एक गुण होता है कि उस किसी पात्र में आप दूध और पानी जल मिलाकर डाल दीजिए, हंस जब दूध को उसको पिएगा तो दूध दूध को पी लेता है और जल को छोड़ देता है, दूध और पानी को भिन्न भिन्न कर देता है, दूध और पानी का छान लेता है, यानी अच्छी वस्तु को ग्रहण कर लेता है, जो उसको आवश्यक नहीं उसको छोड़ देता है, पात्र में रह जाती है। एक ऐसा परमात्मा की दया से उसके अंदर गुण है, वैसी उसके शरीर की व्यवस्था प्रभु ने बनाई है। और हंस में दूसरा गुण यह होता है कि वो एक ही सरोवर पर बुगला भी होता है, जो मछलियां खाता है, कीड़े खाता है, घोगे खाता है, और उसी पर वो बुगला भी होता है, दोनों का शरीर एक जैसा है, पक्षी दोनों ही हैं, लेकिन हंस मोती खाता है, मछली घोगे और कीड़े नहीं खाता, ये दूसरी पहचान है, उसको हंस कहते हैं। इसी प्रकार ये मनुष्य शरीर उसका भी है जो चोरी करता है, डाके करता है, मारता है, ठगी करता है, 2 के 20 बनाता है, रिश्वत लेता है, शराब पीता है, मांस खाता है, जीव हिंसा करता है, है? वो भी मनुष्य है, और जो सत्संग में आते हैं, बुराई से दूर हो गए हैं, परमात्मा की राम नाम की मोती ही उनको अच्छी लगती है, परमात्मा की महिमा ही उनका आहार होता है, वो बुराई नहीं कर सकते, ये उनका पहचान होती है। उन्होंने दूध और पानी को छान लिया है, उनको नीर खीर को छान लिया उन्होंने, वो हंस कहलाते हैं, वो भक्त कहलाते हैं। जैसे आपने नीर खीर को कैसे छाना है कि भक्ति नहीं करेंगे तो हम दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे, मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा, और मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा तन्य प्राणियों में हमें बहुत कष्ट होंगे। जैसे अभी आपने सुना कि एक कुत्ता, वो वही मनुष्य, वही आत्मा जो पहले मनुष्य थी फिर कुत्ता बनकर कितना कष्ट उठाती है। तो ये दूध और पानी जिसने छान लिया वो फिर राम नाम के मोती खाता है, ये शराब मांस तमाखू आदि गोगे नहीं खाता। अनसा से अनसा देश सुदेश का यो पड़ा कुदेशों आए, जिनका चारा मोतियां वो गोग्यों क्यों पतिया आए। ये हंस ये आत्मा उस सुदेश यानी अच्छे देश से आई हुई है सत्यलोक से, और कुदेश में आके गिर गई इस काल के लोक में अपने कर्म के आधार पर, अपनी कमजोरी के कारण ये इस काल के कुदेश में आके गिर गई। और फिर कहते हैं जिनका चारा मोतियां वो गोग्यों के उपतियाए, जिनका चारा हंसों का मोती खाना है वो गोगे नहीं खाते। गोगे आपने देखे होंगे संखले से होते हैं, छोटे छोटे उनमें कीड़े होते हैं, मांस सा भरा होता है, ये बुगले तो उनको खाते हैं लेकिन हंस नहीं खाता उनको। और ऐसी एक सीप होती है, शंख जैसी एक सीप होती है, उसके अंदर से मोती निकलते हैं, वो मोती खाते हैं, उस शंख के मांस को नहीं खाते। तो इसी प्रकार जो आत्माएं परमात्मा की प्यारी आत्मा है, जो किसी जन्म में प्रभु के संग, जैसे आज से 600 साल पहले परमात्मा स्वयं आए थे कबीर परमेश्वर जी, और उस समय 64 लाख उनके शिष्य हुए थे, हिंदू मुसलमान कोई भी जिस धर्म से संबंधित थे सभी। अब वो आत्माएं भक्ति में लगी हुई हैं, वो कई जन्मों से कई युगों से भक्ति करती हुई आ रही हैं, और उनको परमात्मा कोई ना कोई कारण बना के अपने चरणों में लेकर फिर इनसे कोई अच्छे शुभ कर्म करवा जाता है। और अब जो भक्ति काल शुरू हुआ है, अब उन पुण्यात्माओं को पार किया जाएगा। तो ये बताना चाहते हैं कि जो अच्छी आत्माएं हैं उनका आहार है परमात्मा की भक्ति करना, शुभ कर्म करना, अच्छे विचार रखना, किसी की आत्मा ना दुखाना, झूठ नहीं बोलना, ये उसके उनका आहार है। ये मोती है, राम नाम की मोती का सुनना, उस राम नाम की महिमा सुनना, प्रभु की महिमा गुणगान करना और उसके मंत्र का जाप करना, रूपी मोतियां वो उसको रुचिकर होती है, ये उसका आहार है। तो वो गोग्यो नहीं पतियाए, गोग्यो माने वो अन्य बुराई नहीं करते, शराब वो नहीं पीवे, चाहे कितना ही बुराई करने वाला व्यक्ति, चाहे शराब पीवा था, मांस खाया करता, चाहे चोरी ठगी और भी बकवाद कुछ भी करता था, वो आत्मा पहले जन्म में भगवान की भक्ति जो कर रहे थे वो तुरंत बुराई त्याग जाते हैं, उनको अच्छी नहीं लगती, फिर वो बहुत बुरी लगती है, बीड़ी से भी बांस आती है, शराब कोई दूसरा भी पीता उस कमरे में नहीं बैठ सकते। और मांस पहले बेशक वो खाते थे, और इस राम नाम के ज्ञान को सुनने के उपरांत, ये भक्ति शुरू करने के उपरांत उस मांस को खाते हुए को देखकर उसको उल्टी गिरने को हो जाएगी। तो यहां बताते हैं कि जिनका चारा मोतिया वो गोगियों के उपतियाए, जिनका आहार राम नाम की मोती खाना, तो वो उन गोगे नहीं पतियाएंगे, ना किसी की निंदा चुगली सुनेंगे, ना उनकी बात में आनंद आओ जो भगवान की चर्चा नहीं करते। जिसके अंदर भक्ति प्रवेश होगी तत्व ज्ञान के आधार से, वो चाहे कितना प्यारा रिश्तेदार हो, वो भी आपने बुरा तो नहीं लगेगा, लेकिन उसके साथ बात करना जी गणी को ना करे, ज्यादा समय तक उससे आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर जो बात निकलेंगी वो आपको स्वीकार्य नहीं होती, आपकी उसकी तालमेल मिले को नहीं। आप चाहोगे कोई भक्ति की चर्चा करे, वो ठा के लाओगा मेरा लड़का न्यू हो गया, उस लड़का ने इतने उसके इतने नंबर आ गए, इनका उसको वहां दाखिला दिवाऊंगा, एक बात क्या रट्टा घंटे तक लगा रहे। अब उस रिश्तेदार को यह भी नहीं कहा जा सकता भाई तू चला जा यहां से, वो तो एक दिन रुक गया, दो दिन उसकी मौज है। लेकिन अब आप उसकी पहले की तरह सुर में सुर नहीं मिला सकते। पहले हम क्या करते थे, पहले रिश्तेदार अपनी गाथा गाता, वो बंद हो जाता जब अपनी अपनी सुनानी शुरू कर देते हैं, फिर कोई और बात चल पड़ती, फिर कहते ले आ बोतल गुट्टी लावांगे, यानी वो बकवाद बाया करती थी। अब राम नाम शुरू होने के बाद ये ज्ञान प्रारंभ हो गया, ये भक्ति शुरू कर दी, तो फिर हमने उनकी बातें अच्छी नहीं लगती, ना वो शराब पीवा, ना उनका सहयोग दें। पहले तो वो रिश्तेदार कुछ देर तक ऐसे बातें लगाएगा, फिर जब आप समझ जाओगे कि यो मेरी बात सुनता नहीं, उसके लिए क्या तरीका है उस रिश्तेदार को चुप कराने का, भगवान की चर्चा शुरू कर दे। जब वो अपनी सारी रामायण गा ले फिर अपनी कथा शुरू कर दे कि इब का सत्संग में आइयो, बरवाड़ा में सत्संग होगा, ये तारीख है, एक वो रखो साथ में पूरी डिटेल अपने पूरे साल की, वह पकड़ा दे कि ये ले लो, इस अगले इस तारीख को सत्संग है, वहां आइयो, हमारे गुरुजी ये बताते हैं, हमारे गुरुजी ये बताते हैं। अब उसने वो स्वभाव है नहीं, क्योंकि वो तो अभी रोग ग्रस्त है, तो फिर वो थोड़ी सी देर में, पहले तो न्यू क्या करता, मैं कल जाऊंगा, जब भी बैठे या चर्चा कर दे तो शाम तक वो न्यू गया, मत जा रहा हूं अब, कोई काम याद आ गया, वो तुरंत खिसक जाएगा। ये नहीं कि हम उसको यहां से उठाना चाहते थे, नहीं, बेसिक रुको, हमारा उद्देश्य है कि उसको भगवान के रंग में रंगे, ये हमारा रिश्तेदार है, क्योंकि रिश्तेदारी के कहते हैं सात पीढ़ी तक का नाता होता है। आपका रिश्तेदार आपको बुरा थोड़ा लगता है, जैसे अपनी लड़की ब्याह यू बटे बेटियां के साथ लग गया करें। अब उसको हम नहीं चाहते कि भाग जा, हम चाहते हैं राम नाम पर लाग जा, लेकिन वो राम नाम पर लाग नहीं तो हमारी भक्ति में बाधा करेगा, उड़े बैठ के बकवाद करेगा के मन के मन, तो उसके लिए ये राम नाम एक ऑल आउट का काम करेगा, जिस तरह मच्छर का क्रिया करे, जब वो रह गया उसमें तो उसका भक्ति असर करेगी, वो जरूर शरण में आएगा और अच्छे कर्म करेगा, और जब वो भक्ति पे लागण का नहीं होगा तो ऑल आउट उसको बाहर कर देगी, चला जाएगा, ठीक है, बुरा फिर भी नहीं लगता, लेकिन ये जरूर ज्ञान है कि राम नाम पर नहीं लगता, ये दुख बहुत पाएगा। परमात्मा की भक्ति बिना कोई जीव आज तक सुखी नहीं हुआ और ना ही होगा, ठीक है। जिसके पूर्व जन्म के पुण्य चल रहे हैं जब तक उसके, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती, जैसे बसंत ऋतु होती है, बसंत ऋतु के अंदर ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, तो वो बसंत ऋतु जो है उसमें यदि व्यक्ति बगैर मकान बनाए और बगैर किसी मोटे पतले वस्त्र के, अगर सिंपल से वस्त्र में भी बाहर लेट रहा है, वहीं खाना बना रहा है, वहीं रह रहा है, तो वो ये सोचता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, और दूसरों कोई कहता है कि भाई कोई मकान बना ले, कोई झोंपड़ी डाल ले, आंधी आवेंगी, तूफान आवेंगी, वर्षा आवेगी, गर्मी आवेगी, सर्दी सतावेगी, यदि वो व्यक्ति नहीं मानता है तो फिर वो दुख पाएगा, और फिर जब वो सर्दी और गर्मी का मौसम शुरू होगा उसको वो सब यातनाएं होंगी। इसी प्रकार जिन प्राणियों के आज पुण्य चल रहे हैं उनके पास कार भी है, कोठी भी है, बढ़िया उनकी अच्छी नौकरी है, कोई राजा बना है, कोई मंत्री बना है, कोई कुछ बना है, उनको हम कहते हैं भाई राम नाम की झोपड़ी डाल ले, ये बसंत का मौसम सदा नहीं रहेगा, ये पुण्य कर्मों रूपी बसंत सदा नहीं रहेगा, ये पाप रूपी कर्मों की गर्मी भी आवेगी जेठ की, और उसमें तुझे लेने के देने पड़ेंगे। तो वो नहीं मानता है तो उसका वो कष्ट उठाना ही पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार हम अपने हर व्यक्ति को, भाई को, बहन को, रिश्तेदार को, अपने मित्र को यही समझाने की चेष्टा करते हैं कि राम नाम पर लग जा, नहीं तो बहुत दुख हो, तुझे दुख होंगे, कष्ट होंगे। वो कहता है मैं मौज माच रही है मेरी, तो क्या दिक्कत है, सब ठीक है, लेकिन ये सदा नहीं रहेंगे। परमात्मा कहते तू जाने मेरी ऐसे डबेगी, हरदम लेखा भरना रे, ये तो एक एक श्वास का हिसाब किताब है। तो इस प्रकार परमात्मा के नाम पर हमने अपनी क्रिया को सुचारू रखना है। अब ये बताया कि इस हर सुमर सो हंस कहा वह कामी क्रोधी कागरे, अब हम हंस पदवी पर हो गए, हमने ये और बातें अच्छी नहीं लगती। फिर परमात्मा ने बताया है, संतों ने बताया है कि भावरा ना भर में इस विष के बनवे चल बेगमपुर बागरे, चल बेगमपुर बागरे। अब ये जो सत्संग शुरू होगा इस बेगमपुर के ऊपर होगा, शेष जो सत्संग होगा, बेगमपुर किसे कहते हैं जहां कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, बेगम। वो सतलोक उसी को सचखंड कहते हैं। भंवरा कहते हैं इस आत्मा को, इस जीव को भंवरा कहते हैं। ये इस काल लोक रूपी बाग में, विष के वन में, इन विषय विकारों के वन में घूम रहा है। कभी कोई चस्का ले रहा है, कितना गुट्टी लाने का, कितना हुक्का पीण का, कितना सुल्फा खाने का पीण का, कितना अफीम खाने का, और कितना सिनेमा देखने का, कितना और बकवाद करने का। कहते हैं भंवरा ना भर में इस विष के वन में, इस जहर के वन में मत घूमे, चल बेगमपुर बागरे। बेगमपुर उस लोक में, पुर माने स्थान, बेगम जहां कभी कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं। शंखों लहर मेर की उपज कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशे सुक्का सागर सोई ही। जिस लोक में कोई दुख नहीं, कोई कहर नहीं, सभी लहरें वहां पर मेहर की उपजती है। जिस प्रकार जीवन में दिन में या दो चार दस दिन में कभी एक बार एक ऐसी थोड़ा सा समय आता है, इतनी दया भर जाती है दिल में, कोई भी बुरा नहीं लगता किसी से, कोई लड़ाई झगड़ा या द्वेष दुशत्रु को, शत्रु को भी ईसा दिल करे जानो इनको माफ कर दे। क्या ले जाना है संसार से, चले जाएंगे यहीं, ये सब छोड़ जाएंगे। लेकिन वो लहर जो मेर की जो हिलोर होती है, वह थोड़ी सी देर की होया करती है यहां, क्योंकि आप हिसाब ला लो इतनी देर की जो वह दया की लहर थी वो कितनी सुखदाई थी। पूरा शांत शरीर शांत हो जाता है, इतनी शांति होती है। उसके जाते ही वो फिर ज्यो की तो मच्छर से लड़ने शुरू हो जाते हैं, वो नू कर दूंगा, नू कर दूंगा, वह कोठी बनाऊंगा, उसके इतना लेना है, उसके इतने देने हैं, वहां ये हो गया, वो टोटा हो गया, यानी इस तरह के ये फिर हमारे ऊपर ये मच्छर से लड़ने प्रारंभ हो जाते हैं, ये पीड़ाएं प्रारंभ हो जाती हैं। लेकिन उस सतलोक के अंदर वो ऐसी मेहर की लहर सदा रहती है। शंखों लहर मेहर की उपज कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। वो चल बेगमपुर बागरे, आगे बताया कि शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहागरे, नितानंद महबूब गुमानी, प्रगटे पूर्ण भागरे। ये नितानंद जी महाराज ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण कुल में इनका जन्म था। इनका बचपन का नाम नंदलाल था और ये नारनौल के नवाब के वहां तहसीलदार के पद पर नौकरी करते थे। इनके नाना, इनके माता पिता मर चुके थे, नाना नानी ने इनकी परवरिश की थी। नाना जी वहां, इनके नाना जी जो है वो बीरबल खानदान से थे, जो बीरबल अकबर के आप किस्से सुना करते हैं, उस बीरबल खानदान से के ब्राह्मण थे और नारनौल के नवाब के वहां किसी ऊंच पद पर विराजमान थे। उसने ही अपने दोते को वहां तहसीलदार लवा रखा था। नितानंद जी की शादी होगी थी। एक दिन ऐसे परिवर्तन आता है जीवन में। एक संत थे गुमानी दास जी, वो वैष्णो साधु थे, विष्णु जी के उपासक थे। उन्होंने ऐसे ही उन जहां नितानंद जी अर्थात ये नंदलाल तहसीलदार जी अपने मकान में रहा करते थे, उसके साथ में किसी के घर में सत्संग था। अब वो तो उस समय पहले तो ब्राह्मण, ऊपर थे फिर इतनी बड़ी पोस्ट तहसीलदार, आज तो डीसी को भी इतना महत्व तो नहीं है, पहले तहसीलदार को इतना महत्व तो हुआ करता था। तो दूसरे के घर में जाओ तो अपनी बेइज्जती मान, उधर से परमात्मा की महिमा के वचन उसके कानों में गिरे, क्योंकि वो पुण्यात्मा थी। तो एकदम वो फड़क के छत पर आ बैठा, वहां कुर्सी डालकर बैठ गया छत पर। गर्मियों के दिन थे, सारा सत्संग सुना, शेष रात उसने नींद नहीं आई। अब उस नित्यानंद जी ने सोचा, नंदलाल तहसीलदार जी ने सोचा कि भाई मैं इस, फिर उन्हें पता करवा दिया कि महात्मा कहाँ रहता है। पता चला कि यहां आधा किलोमीटर एक किलोमीटर दूरी पर जंगल में इसका आश्रम है। तो नित्यानंद जी ने सोचा भाई नाम तो लेना पड़ेगा, परमात्मा की भक्ति के बिना तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो उद्देश्य मन में सोच कर फिर ये डरे शर्म आवे कि वहां नगरी के लोग बैठे पाओगे नोकेंगे, भाई एक संत एक तहसीलदार वहां गया और ब्राह्मण होकर दूसरों के पास चरण छूता है, या मान बड़ाई साथ में मरोड़ी ला गिरी। लेकिन उस पुनो ने, उस पुण्य पिछले जन्म के भक्ति के प्रभाव ने नहीं टेकन दिया उसको। उसने अपने आप विचार किया कि मैं सुबह जल्दी चला जाऊंगा, वक्त से सुबेरे सुबेरे, तब तक नगरी के लोग नहीं जाएंगे, संत से उपदेश लेकर अपना शीघ्र आ जाऊंगा। इस उद्देश्य से घोड़े पर चढ़कर चल पड़ा। उधर से वही संत जी जिसने सिर पर उस्तरा फिरवा रखा था, कचकोला कढ़ा रखा था पूरा, और वो एक शरीर पर केवल एक तहमंद बांधे हुए, गर्मियों के दिन थे, अपने आश्रम से घूमने के लिए रस्ते रस्ते दूर आ रहा था। उधर से ये तहसीलदार नंदलाल जी जा रहे थे घोड़े पर बैठ के, ब्राह्मण थे। अब उसने देखा नंदलाल जी ने कि सामने एक व्यक्ति आवे कति उस तरह फिराए, तो पहले सोन कसोन ज्यादा सुकन अपसुकन गणे मान्या करते है, ब्राह्मण लोग तो गणे बहुत ज्यादा। तो उसने देखा कि मैं तो जा रहा था अपने जीवन का एक नया सफर शुरू करने के लिए, और ये मनहूस कहां से आ गया उस तरह फिरवाए इसे। अब वापस जाना उचित नहीं समझा कि ये समय बार बार नहीं मिलता, नाम तो आज लेकर आऊंगा। पर उसने अपने हिसाब से सोचा कि इसके सिर में दो तीन ऐसे मार देता हूं, ये सुकून खत्म हो जाएगा। उसके उस संत के निकट जाकर घोड़ा रोक लिया, ने बोला रे कमबख्त, मैं तो आज एक बहुत शुभ काम के लिए जा रहा था, तू कड़े सुबह सुबह सिर माथे लगा उसका दो तीन मारे सिर में, किताम रह तू यहां पर, नू कहकर फिर घोड़ा लेकर आश्रम की तरफ चल पड़ा। और वो संत ने देखा अच्छा मूर्ख आदमी रही हो, दिखे था कोई अच्छा अधिकारी, शिक्षित पढ़ा लिखा सभ्य व्यक्ति, इसने मेरे सिर में मारे, अच्छा मूर्ख। अब संत के साथ तो सो टकरा करें, इसे इसे वो कोनी दान दिया करें, चल भाई आगे न चल पड़ा। संत जी अपना घूमने चले गए, वो संत जी के आश्रम की तरफ चला गया, वृक्ष का घोड़ा बांध दिया। वहां जाकर पूछा भाई महात्मा जी कहाँ है, वहां रहने वाले सेवकों ने बताए आ जाओ भाई बैठ जाओ, अभी आ जाते हैं, घूमने फिरने गए स्नान करने गए। अब संत जी घूम फिर कर स्नान करके नहर में नदी में और आकर उस अपने आसन पर बैठे जहां वही व्यक्ति घोड़े पर बैठा हुआ था, वो आसन से चार फुट की दूरी पर बैठा रखा। सेवकों ने कहा जा भाई यहां बैठिया, महाराज जी यही आएंगे। अब संत जी ने आके देखा यू तो वे बैठा भाई जिसने तेरे सिर में टोले मारे थे ऐसे करके। अब देख लिया उस नित्यानंद जी ने भी ये तो वही महात्मा है जिसके ना तने बकवाद की थी, अरे तो बात बिगड़ेगी, उस संत नाम तने देखो ना, तेरे व्यवहार को देखकर वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी हुआ, शर्मिंदा हो गया, नीचे को गर्दन कर ली, बोला को नहीं। संत जी जान गए कि ये अच्छी आत्मा का था और इसका कोई गलत फहमी होगी। तो उस गुमानी दास ने कहा भाई बच्चों, उस व्यक्ति उस नित्यानंद से कहा कि ए भगत जी, आप के जैसे एक व्यक्ति मटका लेने जाता है घड़ा कुमार के तहत, और मटका लेने से पहले उसको बजा के देखता है, एक आने का मटका लेकर छह बटोले मारता उसको, देखता है ये कहीं खरा है या खोटा, ये कहीं से गड़बड़ तो नहीं है इसमें। और बेटा तने गुरुजी बजा के देख लिया, क्या दिक्कत होगी, आपने तो अपने जीवन का सौदा करना था और गुरुजी को बजा के देख लिया, कोई बात ना बेटा, तो शर्मावे मत ना। नित्यानंद जी और नंदलाल जो तहसीलदार जी थे महात्मा के चरणों में गिर गए कि हे दीनदयाल, आप सचमुच दयालु हैं, आपने मुझे माफ कर दिया, नहीं मेरा ये दुष्कर्म माफ करने अक्षमा योग्य नहीं था। उनको उपदेश दिया, फिर उसकी इतनी लो लाग गई कि नौकरी से आते ही सीधा सत्संग में आश्रम के वहां। ये उसकी पत्नी को गवारा नहीं हुआ, क्यों बहन को चिंता हो जाती है बगैर ज्ञान के कि बाबा बन जाएगा, घर छोड़ देगा, तेरी ब्रेन मैटी हो जाएगी। तो उस लड़की ने एक दो बार उस महात्मा से कहा कि आप मेरे पति को यहां मत आने दिया करो, इनको कह दो यहां नहीं आवे, और आपने पता नहीं क्या खिला पिला दिया, ये घर में कम रहता है और आपके पास ज्यादा आता है। उसने कहा बेटी मैंने कुछ नहीं कहा, इसका कोई पिछला संस्कार है, और आप भी भक्ति करो बेटा, भक्ति किया करें, परमात्मा का नाम ले। वह तो नहीं मानी, लेकिन इतना विरोध करने लगी कि एक दिन नित्यानंद जी सुबह सुबह जल्दी जाते थे दर्शन करने, उससे भी पहले उठकर वो घर से निकल कर दूसरी साइड से महात्मा के आसन पर जा बैठी जहां संत जी विराजमान होते थे। अब वो वहां पर गया, उसने देखा कि यह तो भगतनी बैठी है, बड़ी शर्म आई उसने, के कहेंगे गुरु जी। तो वो इतने में गुरु जी आ गए, महात्मा जी से उस लड़की ने बहुत बुरा भला कहा। नंदलाल जी वापस आ गए उस बहन के साथ, उस समय कुछ नहीं बोले, लेकिन आत्मा में इतना दुख हो गया कि भगवान या तो मेरे प्राण ले लो, या तो ये रास्ता नहीं मुझे बताना था प्रभु, और ये अधूरा रह गया तो मेरा जीवन व्यर्थ है, और या इस भगतमती के माटी संगवा ले, या इसको सद्बुद्धि दे दे परमात्मा, या भी भक्ति कर ले। तो ऐसे महीना 20 दिन उनकी संघर्ष चलता रहा, 2 महीने 3 महीने चला। परमात्मा की कृपा हुई, वह बहन बीमार होगी और 10-15 दिन के अंदर उसकी मृत्यु होगी। उसके बाद नंदलाल ने अपना घर भी त्याग दिया, नौकरी भी त्याग दी, और महात्मा की दीक्षा लेकर के अपनी भक्ति करने लगा। उसने फिर यहां दादरी के पास 4-5 गांव की एक सीमा लगती इकट्ठी, जैसे माजरा, बगेवा, बास, ये 2-3 गांव हैं, 4-5 गांव की एक सीमा है। वहां एक भले जंगल बहुत बड़ा था, उसको जटेला जोड़ बोलते हैं, वहां करके उन्होंने अपनी शेष भक्ति की। अब देखो पुण्यात्माओं, नित्यानंद जैसे महापुरुष को यदि सतलोक का मार्ग मिल जाता तो वो तन मन धन से वहीं जाता, लेकिन उनको केवल वैष्णो साधु मिला, उसने जो ज्ञान दिया उसके आधार पर उसने अपना समर्पण कर दिया, मोक्ष नहीं हुआ नित्यानंद जी का, स्वर्ग तक की उसने साधना की, स्वर्ग में जाकर के फिर वापस आएगा। अब इन्होंने स्वर्ग को ही बेगमपुर मान रखा है, इस स्वर्ग को ही बेगमपुर यानी सतलोक मान रखा है। बेगमपुर माने वहां कोई दुख नहीं होता, नहीं कि और स्वर्ग में तो जितना दुख है कितना भी को नहीं। पहला दुख तो यह है कि हमारी जेब कटे, हमारा पुण्य समाप्त हो, सबसे बड़ा धोखा हमारे साथ। फिर वहां पर भी यही राग द्वेष खेचा ताणी नाचने गाने सारी बकवाद जो यहां नहीं है उपलब्ध, वो स्वर्ग के अंदर है। जैसे छोटे शहरों के रेस्टोरेंट में सभी सुविधा नहीं होती, तो बड़े शहरों के रेस्टोरेंटों में सारी बकवादें मिल जाती हैं, लेकिन वहां जाता है पैसे वाला ही, गरीब आदमी उन रेस्टोरेंटों में नहीं जा सकता। इसी प्रकार ये स्वर्ग रूपी और महास्वर्ग रूपी जो रेस्टोरेंट हैं, यहां पर उस राम नाम के वो धनी जाते हैं जिनकी कमाई गणी है, और वहां पर अपने पुण्यों को खत्म करके फिर 84 लाख योनि में आ जाते हैं। ये सिलसिला केवल सतलोक में जाने से ही समाप्त होगा, सचखंड में जाने से समाप्त होगा। उसके जाने की विधि आपको यहां बताई जाती है बरवाला सतलोक आश्रम में, और उसी से हम इसका छुटकारा पाएंगे। तो उस समय अब उस नित्यानंद जी महाराज ने क्या कहा था कि ब्राह्मण कुल में जन्म था मैं, करता बहुत मरोड़े, और गुरु गुमानी दास ने दिया कुबदगढ़ तोड़े। ओए होए, आज हम छोटे सी कोई पोस्ट मिल जाती है, थोड़ा सा धन हो जाता, एक कोठी और कार हो जाती है, तो हम फूले नहीं समाते, जैसे समाज के हिसाब से ऊंच जाति में जन्म हो जा और फिर धन चोखा हो जा, बढ़िया कोई पोस्ट या पैसे की व्यवस्था घनी हो जा, तो घनी मरोड़ हो जाती है हमारे अंदर। आज से 250-300 वर्ष पहले जब नित्यानंद जी थे, उसमें ब्राह्मण जाति को एक विशेष आदर दिया जाता था, छोटे से बालक ने भी दादा कहा करते, तो इस तरह उस कहते उस समय जब मैं इतना ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़े, बड़ा अभिमान किया करता था, और वो अभिमान मुझे नरक में डाल देता। वो कुबद का गढ़ था, उस कुबद के गढ़ ने उस संत ने तोड़ा, कुबद के गढ़ को संत ने तोड़ा, गुमानी दास गुरु ने तोड़ दिया और मुझे एक इंसान बना दिया, एक भक्त बना दिया। ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने वो दिया कुबद गढ़ तोड़े। फिर वो नितानंद जी अपनी जैसी साधना की वो अपने करके चले गए। उससे हमने सभी ने ये शिक्षा लेनी है। अब देखो, एक बच्चा किसी कोर्स में दाखला ले रहा है, प्रवेश पा लिया, एक ने किसी कोर्स में पा लिया, जो जैसा कोर्स करेगा उसको उस वैसा ही बेनिफिट मिलेगा। तो हमने पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उसके लिए जो ट्रेनिंग, उसके लिए जो कोर्स है, वो इस सतलोक आश्रम बरवाला और क्रोथा में कराया जाता है।